आपके साथ भी हो सकता है।
आज भी खत नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह कोई खबर जरूर मिलेगी।
कब मिलेगी? कई साल तो गुजर गए।
ताखीर हो सकती है लेकिन जरूर आएगा, मुझे यकीन है। आपको मालूम है कि ईरान में है?
ईरान? नहीं। हाँ शायद, पता नहीं।
गलती आपकी है मदीर बेगम।
शुक्रिया जवाब साहब।
मेरे शोहर को कोरमा सब्जी बहुत पसंद है, हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ।
आपकी बड़ी हिम्मत है, कमाल करती हैं।
ऑर्डर क्या है? एक तरह की मैकरोनी है।
5-6 किलो सब्जियां लेने आई थी।
इतनी सारी सब्जी कैसे?
सब्जी इसकी अच्छी होती है।
हाँ नहीं भाई, मैं तो एक ही लूंगी, 1 ही किलो बस, हम 2 अफराद तो हैं।
हाँ। देखो ज्यादा सड़ा गला ना रखना।
आप इत्मीनान रखें, क्या कभी हमने खराब सब्जी आपको दी है?
सही है, ठीक है,
चले हम भी थोड़ी सब्जी ले लें।
देखो तो मैं अगर उनकी जगह होती तो 40 साल बाद भी घर से ना निकलती।
अरे ऐसे चलती है जैसे कोई शहजादी हो।
मुझे तो उसके सामने जाना अच्छा नहीं लगता, इंसान को उसके गुनाह याद आते हैं।
इंसान को इस उम्र में आखिरत की फिक्र होनी चाहिए।
इसके आवाज हम उस दुनिया में जन्नत के 7वें-8वें तबके में होंगे और वहाँ मजे ले रहे होंगे। ये लोग जहन्नम के पहले तबके में होंगे और दुनिया को याद करके चीख रहे होंगे।
किसी को उनकी आखिरत की क्या खबर, अब बस भी करो, जाने दो।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
शुक्रिया।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम सलाम। ठीक हो?
बहुत शुक्रिया।
सुबह से आप ही के बारे में सोच रही थी। इस साल भी इफ्तारी देंगी या नहीं?
हाँ उसूलन इफ्तारी देनी चाहिए, लेकिन देखें क्या होता है।
कितनी सब्जी ले ली?
रसूल को आश बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा उसके लिए इफ्तारी में थोड़ी पका दूं।
इतनी सारी? शायद पूरे रमजान में उनके लिए आश ही पकाना चाहती है ना।
हाँ ये भी हो सकता है। चलो अच्छा है, बहुत शुक्रिया। सुनो तुम लोग जरा सा आके मदद करो, सब्जियां ले आए। खुदा हाफिज। शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मुनीर खानम, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप इफ्तारी तकसीम करना चाहती हो तो बताइएगा, मैं और लैला आपकी मदद कर देंगे
इंशाल्लाह। चलो ठीक है, देखो अल्लाह क्या चाहता है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
उनको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए।
क्यों?
अरे आपने देखा नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे मजबूरन बात कर रही हो।
ये लोग पिछले साल तक तो ठीक थी।
इस साल पिछला साल नहीं है अम्मी, हम बदल गए हैं।
अरे हमें क्या हुआ है? और फिर इफ्तारी का दस्तखान है, अल्लाह का दस्तखान है, उनका दस्तखान थोड़े ही है। मैं भी उनके लिए थोड़े ही जाऊंगी, बल्कि जो नजर की है उसके लिए जाना चाहती हूँ।
क्या नजर की थी?
गुज़िश्ता साल नजर की थी, अगर तू दाखला टेस्ट में कामयाब हो गई तो हलवा बनाकर दस्तखान पर ले जाऊंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जब भी मैं टेस्ट के जवाबात इतनी जल्दी जल्दी दे रही थी, आपने मेरे लिए ऊपर वाले का सोर्स लगा रखा था ना?
मैं ऐसे ही हूँ, किसी के सामने खुद को गिराती नहीं, अगर किसी के सामने झुकी हूँ तो वो ऊपर वाला है। लैला जान, मुझे तो बहरहाल अपनी नजर अदा करनी है, चाहे वो बुलाएं या ना बुलाएं।
आप लोगों को बहुत ज़हमत हो गई।
अब तुम क्या करना चाहोगी?
मैं समझती हूँ कि बगैर कुछ कहे मैंने उन्हें समझा दिया है। जहमत तो होगी, सब्जी को तख्त पे रख दें। बहुत शुक्रिया।
जब तक लैला अपनी बेटी सारा को ब्याह नहीं देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी।
क्या बात कर रही हो मंसूरा खानम, अब यही रह गया है कि अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लाऊं जिसकी माँ बुढ़ापे में अपनी शादी के लिए तैयार खड़ी हो, बस यही बचा है अब तो।
लेकिन जवाद साहब ऐसे क्यों हो गए?
अरे भाई उसकी क्या गलती है, मर्द है, आखिर किसी से तो शादी करनी ही है उसे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि इतनी सारी औरतों लड़कियों में उसने सारा का कैसे इंतखाब कर लिया।
क्यों का जवाब तो उन्हीं से पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
जिंदा रहो तुम, मुस्तगफिरुल्लाह, कितना हम हंसे तोबा तोबा।
जवाद साहब इतने अच्छे और शरीफ इंसान हैं और इतना इस मोहल्ले में आते जाते हैं कि अगर वो कुवारी लड़की का भी रिश्ता ले करके आते तो भी कोई उन्हें मना नहीं करता।
जिस सारा को मैं देख रही हूँ उसने जवाद को फंसा लिया है। तुम्हें याद है जब वो टीवी और एंटीना ठीक कराने के बहाने और दूसरे बहुत से बहानों से उसकी दुकान पे जाती थी? उसी वक्त उसके दिल में जगह बना ली थी, हम नहीं समझ सके।
लेकिन वो कब शादी कर रहे हैं? जिस सारा को मैं पहचानती हूँ वो खुद को 20 साल की लड़की समझती है, मैं नहीं कि शादी भी करे।
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन निकाह तो हो गए। मंसूरा बेगम, इंसान इस जमाने में इन आंखों से जो कुछ भी देख लेना वो कम है। आखिर कोई नहीं जो उससे ये कहे कि तुम एक शोहर तो खा चुकी हो, अब एक कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, न कि इस उम्र में पूरे महल्ले में अपना तमाशा बनवाओ जाके यहाँ वहाँ।
पहले मुझे सारा बुरी नहीं लगती थी, ये बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन इस काम से वो मेरी नज़रों में गिर गई है। मैंने बहुत सारी बेवाएं देखी हैं, जैसे आप हैं। क्या आप बेवा नहीं हुई हैं? आपने घर में बैठ करके अकेले अपने बेटे रसूल की परवरिश की है। क्या आपके रिश्ते कम आते थे?
बहुत रिश्ते आए। हाजी साहब की मौत के बाद उनके आधे से ज्यादा साथी मेरा रिश्ता लेके आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने सोचा उस मरहूम के बाद अपने बेटे के सिवा किसी मर्द को आंख उठा के नहीं देखूंगी, बस अपना बेटा। हाजी साहब की मग़फ़िरत करे खुदा,
उनकी रूह शाद रहे बेगम।
अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी।
ये बताएं बेगम, आपके बेटे रसूल का क्या ख्याल है? उसने कुछ कहा?
मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं काटता, जो भी हो उसकी रगों में अलहाज कुमाशी का खून है, आपकी कब्र पर नूर बरसे।
आज मुनीर साहिबा से मुलाकात हुई।
अच्छा,
ये जाहिर नहीं होने दिया कि तुमसे मुलाकात हुई है।
तुम्हारी माँ के इस काम से हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
क्या वो शरीयत के खिलाफ कुछ कर रही हैं? 16 साल तक सिया कपड़े पहनने और बेवा रहने के बाद शादी करना चाहती हैं।
बहरहाल बुरा तो है।
बुरा क्यों है? बुरे तुम हो जो रोजे की हालत में अल्लाह और रसूल की बात की मुखालफत कर रहे हो। अल्लाह और रसूल ने भी कहा है कि शादी उनकी सुन्नत है।
लेकिन तुम्हारी माँ के उम्र वालों के लिए नहीं।
तो फिर कल मैं जब जना वाली की बीवी बन जाऊंगी तो मेरी माँ को अकेले घर में बैठकर सड़ना पड़ेगा। मुझे भी उनकी फिक्र लगी रहेगी कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए।
अच्छा वाकई तुम्हें अपनी माँ के काम पे एतराज नहीं है या अदाकारी कर रही हो?
वाकई मुझे कोई मुश्किल नहीं है।
यानी मैं और तुम अगर एक दूसरे से शादी करें और फिर उसके बाद मैं मर जाऊं तो तुम दो दिन बाद शादी कर लोगी?
तुम्हारा दिल क्या जवाब सुनना चाहता है?
नहीं हकीकत बताओ।
कल परसों तुझसे शादी नहीं कर लूंगी, लेकिन 10 साल के बाद शायद ये काम कर लूं। तुम भी अगर मेरी जगह होते तो तुम भी यही सोचते। जिंदगी की हकीकत यही है रसूल। और फिर तुम्हारी माँ तो 10 साल भी सब्र नहीं करके 1 साल के अंदर ही तुम्हारी शादी कर देंगी।
मेरी माँ ने अभी तक अपने काले कपड़े नहीं उतारे हैं।
तुम समझते हो वाकन सही किया है?
काश अपनी माँ से बात की होती, अभी देर नहीं हुई है।
अगर मैं समझती कि उनका काम गलत है तो उनसे बात करती, लेकिन ऐसा नहीं है। काश तुम अपनी अम्मा से बात करते।
अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
इफ्तार के बाद क्या कर रहे हो?
कुछ खास नहीं कर रहा हूँ।
कुछ लोग हमारे घर आना चाहते हैं, तुम भी आओगे?
कौन लोग?
हम ही लोग हैं ना, इतना सवाल क्यों कर रहे हो?
ताकि इनकार कर सकूं।
अच्छे मूड में नहीं हो क्या?
नहीं नहीं।
लैला से तुम्हारी शादी की बात कहाँ पहुंची?
अभी कहीं भी नहीं।
मैंने सुना है तुम्हारी और तुम्हारे सास की शादी एक ही रात होने वाली है।
अपना मुंह बंद कर।
मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जोक बन गया है। वाकई तुम्हें बुरा लग गया?
अभी कुछ भी नहीं हुआ और अफवाह शुरू हो गई।
रोजे के आलम में मैं झूठ नहीं बोल सकता, पूरा महल्ला उन्हीं की बात कर रहा है। बुरा ना लगे, बाज लोग तुम पर भी हंस रहे। रसूल, तुम्हारी एक हैसियत है, तुम्हारे वालिद का एक मातमी दस्ता था। इस मामले से बाहर निकल आओ, आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेइज्जती। मैं तो कहता हूँ मेरी बहन से शादी कर लो, दोनों रिश्तेदार भी हो जाएंगे। मंजूर है?
क्या बात है बेटी, नाराज क्यों हो?
कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है।
अगर खास बात ना होती तो इफ्तार तक तुम्हारा गुस्सा बाकी ना रहता।
आज मैंने रसूल से बात की।
तो फिर?
मैं समझती हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी,
खत्म हो गया? क्या मतलब?
वो कह रहा था कि उसकी माँ को हमसे कुछ मुश्किल है।
जवाहर साहब की वजह से है ना? तुमने इनसे क्या कहा?
मैंने कहा कि मेरी माँ शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, शादी सुन्नत पैगंबर है।
दिल की गहराइयों से कहा।
अम्मी, जवाहर साहब अच्छे और मेहनती इंसान हैं। दूसरी बात ये कि आपको ज़िंदगी गुजारने का हक है। इन बरसों में जब मुनीरा बेगम अपने मरहूम शोहर की दौलत पर ठाट कर रही थी और एक फदाकार माँ का दिखावा कर रही थी, उस वक्त आप सिलाई करती थी ताकि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूँ। अब वक्त आ चुका है कि आप भी कुछ आराम कर लें। अगर रसूल ने कबूल किया तो ठीक है, वरना मैं ऐसी इंसान नहीं कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं। ऐसा इंसान जिसका नज़रिया लोगों की बातों से बदल जाए, उसकी मेरी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह कबूल करे।
खुदा कबूल करे।
अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम।
आज लैला दुकान पर आई थी।
तो फिर?
हम कब अलग घर चलेंगे?
तुम समझते नहीं हो या समझना नहीं चाहते? सारा पूरे महल्ले का मौजू बनी हुई है और तुम कह रहे हो कि हम उठें और उसके घर चलें।
पहली बात तो यह कि लैला और उसकी माँ का मामला अलग अलग है। दूसरे ये कि सारा बेगम ने शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं किया है।
शरीयत के खिलाफ नहीं किया है लेकिन बेइज्जती है। मैं भी एक औरत थी और दूसरों से ज्यादा मेरे रिश्ते भी आए, लेकिन मैंने इसी दिन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करके तुम्हारी परवरिश की थी ताकि जब तुम बड़े हो तो कोई तुम्हारी माँ के बारे में कुछ ना कह सके। रसूल बेटा, लोगों की बातों से डरो, लोगों की बातें तुम्हारे घर में आग लगा देंगी।
लेकिन मैं लैला से प्यार करता
हूं। अगर लैला भी तुमसे मोहब्बत करती होगी तो अपनी माँ को रोकेगी कि कुछ तो हाजी कुमाशी के बेटे की इज्जत का ख्याल करे। हमने ये नाम एक रात में नहीं कमाया है कि एक सेकंड में मिटा दें।
अम्मी जान, प्यारी अम्मी, लैला का मामला उसकी माँ से अलग है।
तुम्हारा मामला मुझसे अलग नहीं है। मैंने यूं जिंदगी गुजारी कि किसी को मेरे पीठ पीछे बात कहने की जुरत ना हो सके। तुम्हारे बाप ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी। मैं इससे पहले लैला से रिश्ते को बहुत पसंद करती थी। समझती थी कि एक अकलमंद लड़की है, तुम्हारे लायक हो सकती है। लेकिन बाद में समझ गई कि नहीं।
आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मियां?
लैला को जब अपनी आबरू की फिक्र नहीं तो मैं उससे किस तरह हाजी कुमाशी की आबरू की हिफाजत की तवक्को करूं?
सुबह आगे जवाद को पैगाम भेजूंगी और बात खत्म कर दूंगी।
लेकिन ऐसा क्यों करना चाहती हैं?
इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम है।
लेकिन किसी की भी जिंदगी दूसरे की जिंदगी से कम अहम नहीं होती। मैं नहीं जानती कि क्यों सब इस कदर इस मसले को तूल दे रहे हैं। आपको भी इतना ही जिंदगी गुजारने का हक है जितना मुझे है।
लेकिन मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी जिंदगी के मौके खत्म हो जाए।
इत्तेफाक से इस तरह अपने अतराफ के लोगों को पहचानने में मदद मिलती है।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम बेगम साहिबा।
बेगम, वकील से वादा ले लिया?
इतनी सारी सब्जी कैसे साफ करोगी?
सारा को बुलाना है या नहीं?
इस साल तो देख रही हो कि जगह नहीं है, मजमा ज्यादा है।
अच्छा किया कि अपने यहाँ रिश्ता होने नहीं दिया।
हाज कुमाशी की अमानत मेरे हाथ में है। अगर मैं कोताही करूंगी तो हाजी साहब मुझे माफ नहीं करेंगे। खुदा की कसम, रसूल के लिए दुल्हन लाना मेरे लिए डरावना ख्वाब हो गया है।
मुनीरा बेगम, तुमने मेरी बहन की बेटी को देखा है?
अकदस की बेटी?
हाँ हाँ,
छत बचपन में देखा है उसे।
इफ्तार के लिए वो आपके पास आएंगी। मेरी बहन की यही एक लड़की है, हर तरह की क्लास अटेंड की है, खाना पकाना, मेकअप करना, सिलाई करना, कढ़ाई, इंटरनेट वगैरह सब चीजें। उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और जहेज भी बहुत ज्यादा है उसके पास।
वैसे आपस की बात है, सारा ने अपनी आबरू और इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा।
चलो छोड़ो, रोजे में इस तरह की बातें ना करो। वो भी अकेली है, जवान है, सूरत शक्ल भी अच्छी है, आखिरकार उसे भी तो जिंदगी गुजारनी है ना।
क्या आप तन्हा नहीं थी? आपने अकेले ही रसूल की परवरिश की। आप जैसी औरतें इस शहर में बहुत कम हैं।
अब हर शख्स के पास कोई ना कोई सलाहियत तो होती है, कोई मेरी तरह कर सकता है, कोई सारा बेगम की तरह नहीं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? ठीक है, अभी आती हूँ, खुदा हाफिज़। अम्मी, मैं एक मिनट के लिए रसूल के पास जा रही हूँ, अभी आती
हूँ। ठीक है, जाओ बेटी, ये अपना ख्याल रखना।
शमसी, इसे अच्छी तरह चलाना, समझी?
ठीक है।
हाँ, ये अब रंग पकड़ रहा है। तुम्हारी नजर में क्या हाल है?
बस अब तैयार होने वाला है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सलामत रहो। माबूद तू ही मदद करना। क्यों दुकान नहीं गए?
दिल नहीं चाहा।
क्यों दिल नहीं चाह रहा?
मेरा मूड ठीक नहीं है लैला, तुम समझती क्यों नहीं?
अम्मी से बात की?
हाँ, वो तुम्हारे खिलाफ हैं, मान नहीं रही हैं।
अब तुम क्या करना चाहते हो?
अपनी माँ को भी तो नहीं छोड़ सकता।
किसने कहा माँ को छोड़ दो?
मेरी माँ, मुझे माँ और तुम्हारे दरमियान किसी एक को चुनना है।
इंतखाब? असला इंतखाब क्यों करोगे?
क्या तुम्हारी माँ ने इंतखाब नहीं किया?
नहीं, मेरी माँ फैसला कर चुकी है।
लैला देखो, इस महल्ले में हमारी इज्जत है। हम जानते हैं कि लोगों के कुछ कानून हैं जिसे तुम्हारी माँ ने तोड़ दिया है।
अल्लाह का कानून तो नहीं तोड़ा है।
लैला, सब हमारे पीछे बातें बना रहे हैं।
मैं लोगों की बातों से नहीं डरती।
लेकिन मैं डरता हूँ।
तो तुम इंतखाब कर चुके हो?
नहीं, मैं मुंतजर हूँ कि तुम इंतखाब करो।
तुम्हारे और अम्मी के बीच या कानून खुदा और लोगों के कानून के बीच?
तुम्हारी माँ एक 40 साल खातून है, घर में बैठने और अपनी बेटी की शादी और नवासों को पालने के बजाय अपने लिए शौहर की तलाश में है। माफ कर दो।
ये सब तुम्हारी बातें हैं?
नहीं, लोगों की बातें हैं।
जो दूसरों को जिंदगी गुजारने का हक नहीं देते, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं।
लैला,
सलाम।
वालेकुम सलाम।
मुझे मालूम है कि आपके यहाँ इफ्तार है, हमें नहीं बुलाया है, लेकिन ये नज़र लाई हूँ क्योंकि गुज़िश्ता बरस इसी इफ्तारी में मन्नत की थी। मुझे अपनी मुराद मिल गई है, लीजिए। मुझसे इतना खफा क्यों है?
क्योंकि तुम खुद गरज हो।
हम 10 साल पड़ोसी थे बेगम साहबा, एक दूसरे के गम में शरीक थे। कभी भी इन 10 बरसों में हम खुद गरज नहीं थे। एक साल में हम कैसे हो गए?
अपने हाथों अपनी बेटी और खुद को बदबख्त कर रही हो।
क्यों? इसलिए कि शादी करना चाहती हूँ?
इसलिए कि अपना इख्तियार अपने दिल को दे दिया है।
मैं नहीं जानती कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। आखिर क्यों बच्चों को इस मसले में उलझा रही हैं?
इस महल्ले में मेरी इज्जत है मोहतरमा, एक उम्र अपनी इज्जत बचा के रखी है। मेरे बेटे की भी कोई ऐसी उम्र नहीं है। जब उसकी शादी का वक्त होगा तो खुद ही उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ लूंगी कि ना उसकी माँ के पीछे बात करे कोई, ना उसके पीछे। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो दिल के बजाय अपनी बेटी को चुनती, ना कि अपने नफ्स की पैरवी करती। हेलो।
सलाम अलैकुम लैला साहिबा, मैं जवाब दूँ?
सलाम अलैकुम जवाब साहब।
आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लाया हूँ।
अस्पताल? क्यों?
परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप खतरे से बाहर हैं।
आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में हैं? ठीक है, अभी आती हूँ। खुदा हाफिज।
सुना है सारा को अस्पताल ले गए। पता नहीं क्यों।
तुमने सुना सारा हॉस्पिटल में है?
कौन कह रहा है?
सब कह रहे हैं।
क्यों?
मैं क्या जानूं? लेकिन इस उम्र में हमारे लिए किसी तरह का हैजान ठीक नहीं है।
सारी इज्जत खाक में मिलाती।
बहुत अच्छा किया आपने अपने बेटे को रोक लिया।
रास्ते से तो उसे नहीं उठाया था कि उसका इख्तियार उसे सौंप देती।
सुन रही हो कि ईद फितर में निकाह होने वाला है?
तो ईद में शादी होनी चाहिए।
तो क्या जश्न भी मनाएंगे?
पानी सर से गुजर गया तो चाहे एक बालिश्त हो या 100 बालिश्त हो, क्या फर्क पड़ता है फिर? नरगिस बीबी, जरा सा देख लो दरवाजे पे कौन है।
ठीक है, देखती हूँ। मुनीर बेगम।
माफ कीजिएगा, बुलाए बगैर आ गई हूँ।
अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। जरा सा आप लोग जगह दें, जगह देना उसको थोड़ी सी। आ जाओ आ जाओ।
मेरा नाम लैला है।
लैला?
मेरे पास अभी वो गर्दनबंद महफूज है जो आपने दिया था। एक दिल है जिस पर लिखा है लैला।
ओ हाँ, बुढ़ापा इसी को कहते हैं, क्या किया जाए, अब याद नहीं रहते नाम ना जल्दी हूँ।
इसका नाम जो भी हो लेकिन बुढ़ापा नहीं है बेगम। मुनीर, इसे आपने आंगन में छोड़ दिया था।
ये मेरा नहीं है, नहीं तो न छूटता।
इस दस्तखान की नियत से तैयार किया गया है, लेकिन आपने मेरी माँ को इजाजत नहीं दी कि वो आए इस दस्तखान पर अपनी नजर अदा करे।
इस घर का दरवाजा हर शख्स के लिए नहीं खुला है।
मैं और मेरी माँ कब से गैर हो गए हैं?
जब से तुम्हारी माँ ने दिल का बहाना बनाकर अपनी इज्जत बेच दी।
हमने कौन सी बेइज्जती कराई है जिसके आप?
बेटी, ये इफ्तार का वक्त है, हम सब रोजे से हैं। इस वक्त जो भी बात करेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी, तो बेहतर है कि दुआ करें और दुआएं पढ़ें।
आप लोग खूब बातें बनाना जानती हैं। आप लोग इफ्तार नहीं करती, मुर्दार खाती हैं। ये रोजा कबूल नहीं है।
अपने औकात से बढ़कर बातें कर रही हो तुम, बदतमीज।
आप लोगों ने इतनी गिबत की कि मेरी माँ को अस्पताल जाना पड़ा। उसने क्या गुनाह किया था? मेरी माँ के टूटे हुए दिल की कसम, आप लोगों से किसी को माफ नहीं करूंगी।
चलिए इफ्तार करें, खवातीन अपना रोजा खोले।
बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करें।
लीजिए
बेलोश, आप
लोग लीजिए, तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, लीजिए।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
क्या हुआ?
अम्मी हॉस्पिटल में हैं।
मैं जानता हूँ, जवाद साहब ने मुझे बताया।
जानते हो बेगम मुनी ने मेरी माँ को अंदर नहीं आने दिया।
मैं शर्मिंदा हूँ लैला,
हमें इस महल से चले जाना चाहिए।
क्या?
जवाद साहब वगैरह के महल में चले जाऊंगी। खुदा हाफिज।
फिर हमारा क्या होगा? सब कुछ इतनी आसानी से खत्म कर देना चाहती हो?
इतनी आसानी से? मगर हमने क्या किया है कि हमारी इतनी तौहीन की जा रही है, हमारी इतनी बेइज्जती करें?
तुम सही कह रही हो, सबको जिंदगी गुजारने का हक है। अगर हमारी माँ भी लोगों के लिए जिंदगी न गुजारती तो हमारी हालत आज ये न होती। मैं लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, अपनी माँ से बात करूंगा।
तुम मुतमईन हो?
अब अस्पताल चलें।
आप
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رسول
جی
یہاں تم سے کام ہے.
کیا ہوا؟
اسپتال گئے تھے.
لیلا کی ماں کو دیکھنے گیا تھا.
کیوں؟
کیونکہ آپ نے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا. کیونکہ میں لیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں.
تو پھر تم نے انتخاب کر لیا ہے.
میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی عورت سے شادی کروں یا نہ کروں. میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں بس.
یعنی جس نے اپنی پوری زندگی تم پر مٹا دی اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ.
میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی مٹا دیں. ہم صرف ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں لیلا سے محبت کرتا ہوں, اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میری شادی ہونے دیں.
اپنا سامان اکٹھا کرو اور جاؤ.
امی
بس یہی تو کہیں گے کہ قمیشی کی عزت کی وجہ سے بیٹے کو نکال دیا.
کون سی عزت؟ یاد ہے بابا کی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے مدت و خون دل پیا ہے اور لوگوں کی باتوں سے ڈرتی رہی. جب سے میں نے آنکھ کھولی اس وقت سے آپ اس گھر سے جانا چاہتی تھیں لیکن نہیں گئیں. صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. ہمیشہ ایسا ہی تھا. صرف لوگوں کی باتوں کے خوف سے پوری زندگی گزار دی. صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بابا کے ساتھ رہیں. ایک ایسے انسان کے ساتھ جو آپ سے محبت نہیں کرتا تھا. آپ نے پوری زندگی اسی میں گزار دی کہ بابا کے برے کاموں کو کیسے چھپائیں, کہیں لوگ کچھ جان نہ لیں. آپ کس چیز سے بھاگ رہی ہیں؟
تم اپنے مردہ باپ کا بھی احترام نہیں کر رہے ہو.
آپ پوری عمر جھوٹ کے سہارے گزارنا چاہتی ہیں لوگوں کی باتوں کے خوف سے. میں آپ کی طرح نہیں رہ سکتا. میں اپنی طرح رہنا چاہتا ہوں.
میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے گزاری ہے بیٹا, اور تمہیں یتیمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا. میں نے ایسا نہیں ہونا.
آپ نے یہ سب کچھ اپنے لیے کیا, میرے لیے نہیں. آپ نے اپنے کردار کو مجھ سے اور میری زندگی سے زیادہ چاہا.
نکل جا میرے گھر سے. کون ہے؟
امی السلام علیکم. میرا دل آپ سے ملنے کو چاہ رہا تھا اس لیے چلا آیا.
تو لیلا نے تمہیں اجازت دے دی ماں سے ملنے کی؟
امی
جانتے ہو تمہیں لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟
انہیں کہنے دیں جو چاہیں وہ کہیں.
کہتے ہیں حاج قمیشی کا لڑکا ماں کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ بھی ایک لڑکی کے لیے. وہ لڑکی کی جو اپنی ماں کی شادی میں پوری پوری شریک تھی.
امی ان باتوں کو چھوڑیں, لوگوں کی تو غذا ہی یہی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ان باتوں سے ان کی روزی بڑھ جائے گی.
چلے جاؤ تم, وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو. میں اسی دن تم کو بھول گئی تھی کہ جس دن تم مجھے چھوڑ کے اس لڑکی کے لیے گئے تھے.
امی لیلا حاملہ ہے, کیا آپ اپنے پوتے کو بھی چھوڑ دیں گی؟
تو بچہ بھی ہونے والا ہے. تم نے مجھے ذلیل کر دیا ہے یہاں سب کے سامنے. یہاں تمہیں قدم رکھنے کا حق نہیں ہے. اب نہ یہاں تمہاری کوئی ماں ہے اور نہ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے, سمجھے؟
امی آپ لوگوں کی بکواس کی وجہ سے سب کچھ ختم کر رہی ہیں. امی ہم نے کینیڈا جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ اجازت نہیں دیں گی تو نہیں جائیں گے. امی دروازہ کھولیں. यहाँ है। क्या चाहिए? नया शोशा चाहिए? आइए। बेगम मुनीर ने अपने अकलौते बेटे के लिए भी दरवाजा नहीं खोला ताकि तुमसे पीछे न रहें।